देखो मैं ये कह रहा था TR माइल्स MILES एक किताब है, वो है राइट थिंकिंग पर। व्हाट इज राइट थिंकिंग, इस सब्जेक्ट पर वो बहुत अच्छी किताब समझाती है। तो उसने बताया है कि आर्गुमेंट्स दो किस्म के होते हैं, पोएटिक आर्गुमेंट और साइंटिफिक आर्गुमेंट। वो कहता है कि पोएटिक आर्गुमेंट इनवैलिड आर्गुमेंट है, एक कहने के लिए तो आर्गुमेंट है, जब वो बोलेगा आदमी तो समझ के कहेगा कि मैं आर्गुमेंट दे रहा हूँ, वो लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो पोएटिक आर्गुमेंट वैलिड आर्गुमेंट नहीं है, साइंटिफिक आर्गुमेंट है वही वैलिड आर्गुमेंट है। वो एक एग्जाम्पल देता है, बैंक की एक टर्म है डट चेक, DUD डट चेक। तो बैंक वाले डट चेक उसको कहते हैं कि जिसके अगेंस्ट में वहां पर मनी ना हो। मेरे एक आदमी का अकाउंट है, उस अकाउंट में 10,000 रुपया उसको है, 10,000, उसे चेक लिख दिया 50,000 का, 50,000 का। तो वो 50,000 का चेक जो दिया वो वहां पर कोई लेकर जाए तो बैंक उसके अगेंस्ट में पैसा नहीं देगा, क्योंकि क्योंकि उस चेक के अगेंस्ट में उस आदमी के जो अकाउंट है उस अकाउंट में इतना पैसे नहीं है। तो वो कहता है कि पोएटिक आर्गुमेंट इज जस्ट लाइक डट चेक, जिस तरह डट चेक का कोई कैश नहीं मिलता, जिसमें पोएटिक आर्गुमेंट से कोई बात प्रूव नहीं होती, जिस तरह से डट चेक का कोई पैसा नहीं मिलता, बैंक पैसा नहीं देता, इसी तरह से पोएटिक आर्गुमेंट से कोई प्रूव नहीं होती, सिर्फ सिर्फ साइंटिफिक आर्गुमेंट है जिससे कोई प्रूव होती है। ये जैसे फॉर सपोज हमारे सिस्टर्स में करा दिया है कि मेंबर अब कोई कहे कि इसका नाम राजी है, जो खुदा से राजी है, कोई कहे कि ये लड़की का नाम राजी है, ये खुदा से राजी है, ये पोएटिक आर्गुमेंट है। इसका मतलब नहीं कि राजी है तो राजी है, क्लियर नहीं हुआ, राजी होती राजी है, है? ये होते मैं तुमको बता दे रहा उसे, फिर बिल्कुल राजी समझो है, तो फिर मुझको फिर राजी समझो, मेरे इस्लाम को फिर से माजी समझो, बोली हंस के बोली के तो फिर मुझको भी राजी समझो, भूल गया ये लोग पता है, इन्हें तो पता है। ब्रिटिश पीरियड में एक लड़का था, तो वो एक मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता था, एक अंग्रेज लड़का मुस्लिम लड़की से, तो हाँ ठीक है, लड़का मुस्लिम था, लेडी ब्रिटिश थी। तो लेडी ने कहा, वो लड़की ने कहा कि भाई तुम्हारा मजहब वो है ब्रेडी मजहब है, मारकाट करता है, जहाद है उसमें, तुम्हारे मजहब में हम कैसे रह सकते हैं, कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो खूनी मजहब है। तो लड़का कहता है कि वो तो मैं छोड़ दूंगा कब तक इस्लाम, इस्लाम अब मैं इस्लाम से मुझसे क्या मतलब, تو اس میں اکبر الہ آبادی نے اس کو اس سے کہا تھا کہ میرے اسلام کو اب اس سے ماضی سمجھو. تھنک آف پاسٹ, اس سے ماضی کو مطلب ہے تھنک آف پاسٹ. میرے اسلام کو اب اس سے ماضی سمجھو, ہنس کے بولیں کہ تو پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو. میرے اسلام کو اب اس سے ماضی سمجھو, ہنس کے بولی کہ تو پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو. تو اب میں یہ کہتا کہ اگر ہماری پیپلز ٹیم کے ایک ممبر کا نام راضی ہے, راضی, اب کوئی کہے کہ دیکھو ان کا نام راضی ہے, یہ خدا ان سے راضی ہے, پولیٹک آرگومنٹ. اس طرح سے کوئی بات پروو نہیں ہوتی ہے. اور سچ مجھے ایسا قصہ ہوتا ہوں تم کو آدم گڑھ کا. ایک صاحب تھے, وہ لائر تھے, وکیل. تو ایک سول کورٹ میں ایک کیس آیا, کچھ وہ پراپرٹی کا معاملہ تھا. تو دوسرا جو یعنی اپوزٹ پارٹی تھی اس کا نام تھا باقی, عبد الباقی نام تھا. دوسری پارٹی کے وکیل کا نام عبدالباقی تھا, ان کا نام کچھ اور تھا. تو وکیلوں کے بیچ بات چلتی ہے وہاں پر, جو اصل جو ہوتا ہے اسے چپ چاپ کھڑا رہتا ہے. جلدی تو کیس میں ایسے ہوتا ہے, یہ پیئر کیس ہے نا, پیا وہاں چپ چاپ کھڑی تھی. جو بولتا تھا وہ اس کا وکیل, ادھر کون کا وکیل, ادھر کس کا وکیل. تو وکیلوں کے بیچ میں چلتا ہے. تو خیر وہاں پر کیس ہوا, تو حسن کا وکیل عبدالباقی نام تھا, باقی. تو یہ ان کا نام مسٹر سہیل تھا, جنڈو کے ساتھ دوسرے والے تھے. تو وہ جس سے کہتے ہیں کہ جناب ان کا نام باقی ہے, اسی سے پروو ہوتا ہے کہ ہمارا ان کا نام باقی ہے. باقی ملتی ہو, باقی ملتی ان کے اوپر, ان کے اوپر ہے ہمارا باقی. تو بھی سمجھتی ہو, تو بھی سمجھتی ہو باقی, پیسہ باقی ہے یہ بولتے, ڈو باقی ہے. تو سہیل صاحب نے کہا کہ جناب جس سے ایڈریس کو بولتے ہیں وہاں, کہ جناب دیکھیے ان کا نام باقی ہے, اسی سے پروو ہوگا کہ ہمارا ان کا نام باقی ہے. تو جج جو ہے وہ سیریس ہوگا اس کام سے, سہیل یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے, کورٹ ہے, یہ مشاعرہ نہیں ہے, کورٹ ہے. مطلب مشاعرے میں تو کوئی بھی آرگومنٹ پیش کر سکتے ہو, پولیٹک آرگومنٹ وہاں چلتا ہے, کورٹ میں پولیٹک آرگومنٹ نہیں چلے گا. کلیئر ہوئی نہیں؟ کلیئر ہوئی. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹی آر مائس نے بتایا ہے کہ آرگومنٹ دو قسم کے ہوتے ہیں, پولیٹک آرگومنٹ, سائنٹیفک آرگومنٹ. ویلڈ آرگومنٹ جو ہے صرف سائنٹیفک ہوتا ہے, پولیٹک نہیں ہوتا ہے. تو اب میں تم کو ایک قصہ بتاتا ہوں, جو کہ جو سنڈے کی شام کو ہوا. تو اس میں تھا وہ مسٹر خان جو ہے, مسٹر خان کا لیکچر تھا, یہ سچا قصہ ہے, دلی میں. وہ لیکچر ارینج کیا تھا ایسے لوگوں نے جو سینئر افسر تھے اور جلدی ریٹائر ہونے والے ہیں, سارے سینئر افسر تھے. تو اب ان کا یہ پرابلم کہ ریٹائر ہونے کے بعد کیا کریں, تو اسی پر رکھا تو انہوں نے, اور کئی لوگوں سے بلوایا تھا کہ ایسے لوگ جو ریٹائر ہونے والے ہیں, ریٹائر ہو چکے ہیں, کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو پرابلم ہوتا ہے اس سے کیسے ٹیکل کیا جائے. इनका मिस्टर खान का भी वहां पर लिख था। मिस्टर खान ने एक बात कही जो बहुत लोग सारे लोग बहुत ही खुश हो गए, तो नोट किया उसको, दैट वाज अ पॉलिटिकल आर्गुमेंट। सीनियर ऑफिसर भी दे डोंट नो डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल आर्गुमेंट एंड साइंटिफिक आर्गुमेंट, तो बताता हूँ। इन्होंने एक प्रोपोजिशन का था, एक प्रोपोजिशन उन्होंने वहां पर रखा, ये था कि रिटायर होने के बाद आदमी अपने को रिटायर समझे नहीं, क्योंकि सारी बात है कि समझे तो प्रॉब्लम आता है, ना समझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये बस समझो कि हम रिटायर हो गए हैं, समझो कि हम अगली एक्टिव लाइफ हमारी है जैसे पहले थे वैसे अभी हैं, तो अपने माइंड ये न बनाओ कि हम रिटायर हो गए हैं और बेकार हो गए हैं। तो प्रॉब्लम है जब आता है, जब हम अपने को खुद ही ऐसा सोचने लगे। फॉर एग्जाम्पल दिया उन्होंने अपने इस थ्योरी को इम्प्रूव करने के लिए, तो थ्योरी जो थी वो एनिमल एनिमल वर्ड की थी। ये जिसको उर्दू में कहते हैं भौरा, काले रंग का एक होता है भौरा, इंग्लिश में कहते हैं बम्बल बी, BUMBLE BEE, बम्बल बी, उर्दू में कहते हैं भौरा, काले रंग का होता है वो, तो उड़ता रहता है। तो कहा बम्बल बी की जो उसकी जो बनावट है, बम्बल बी की कुछ अलग ढंग की बनावट होती है। एक और देखो वॉस्प, WASP वॉस्प होती है, उसकी बनावट अलग होती है, येलो कलर की होती है, तो उसकी बनावट जो है दूसरी होती है। और बम्बल बी जो काले रंग का होता है उसकी बनावट दूसरी होती है। तो उन्होंने कहा कि बम्बल बी जो है एरोनॉटिक्स होती है, जो साइंस ऑफ इसकी साइंस, परवाज की साइंस, तो एरोनॉटिक्स होती है एरोनॉटिक्स साइंस ऑफ एरोनॉटिक्स, जो उड़ते हैं, जो ऑब्जेक्ट उड़ते हैं, जो ऑब्जेक्ट उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ता है, रॉकेट उड़ता है, हेलीकॉप्टर उड़ता है, तो उसकी जो साइंस है तो कहते हैं एरोनॉटिक्स। तो साइंस ऑफ एरोनॉटिक्स से कहती है, वहां एग्जाम्पल दिया जाता है उसमें टेक्स्ट बुक्स में, कि बम्बल बी की जो बनावट है वो ऐसी है कि उड़ नहीं सकता वो। साइंस ऑफ एरोनॉटिक्स में जो उड़ने के लिए जिस चीज को ऐसा बॉडी हो, ऐसा शेप हो, इतना बड़ा उसका वो हो, विंग हो, उन्होंने एक अपने हिसाब से एक बनाया है एक स्टैंडर्ड, ऐसा शेप, ऐसा बॉडी हो, ऐसा शेप उसका हो, ऐसा विंग उसका हो, उस पर वो पूरा नहीं उतरता। उन्होंने जो बनाया है एक स्टैंडर्ड शेप उड़ने के लिए, उस पर पूरा नहीं उतरता बम्बल बी। तो एरोनॉटिक्स के हिसाब से बम्बल बी को उड़ना नहीं चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो उड़ता है। अब इससे क्या इन्फर किया उन्होंने, इससे उन्होंने ये इन्फर किया कि बम्बल बी इसको नहीं जानता, कि मेरी शेप जो है उड़ने के लिए, उड़ने वाली शेप नहीं है ये, तो वो अनएवेयर, शी इज अनएवेयर ऑफ दिस, दैट शी इज अनफिट फॉर फ्लाइंग। तो उन्होंने कहा कि अगर बम्बलबी ये जानता कि मैं फ्लाई करने के लिए अनफिट हूं तो कभी फ्लाई ना करता। वो जो गाने वेयर है इसे वो फ्लाई करता है। इससे उन्होंने इन्फर किया कि आप लोग रिटायरमेंट होने के बाद ये सोचेंगे बस कि मैं रिटायर हुआ हूं, ये नहीं सोचेंगे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल आर्गुमेंट है, ये 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 कोई बात नहीं है कि वो जानता नहीं है अपनी कमी को इसे छोड़ता है, ये कोई बात नहीं है, ये कोई साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं है। मैं तो एक रीजन कैसा बताता हूँ, कोई मैं देता हूँ कि 20 वर्ष से शायद 1980 की बात है, यहाँ दिल्ली में एक बहुत जबरदस्त फंक्शन किया गया, तो कुछ लोग जो है वो कुछ हिंदू लोग जो योगा वगैरह करते हैं ना, एक्सपर्ट थे योगा वगैरह के, उन्होंने क्लेम किया कि हम उड़ सकते हैं, हमने प्रैक्टिस की है और हम उड़ सकते हैं। इंसान का बॉडी जो है एक उड़ने के लिए ग्रेविटी से ग्रेटर अगेंस्ट में जाना पड़ता है, ग्रेविटी को डिफाई करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि हमने वो प्रिंसिपल को जान लिया, प्रैक्टिस किए, और ये बॉडी है ग्रेविटी को डिफाई करके उड़ सकता है, वो इसका हम डेमोस्ट्रेशन देंगे। अब जो आप दिल्ली में हजारों हजार लोग, यहाँ नई न्यू दिल्ली में था एक बड़ा सा ऑडिटोरियम, उसमें एक स्टेज बनाया गया, तो वहां पर ये लोग स्टेज पर आए, वो लोग जो जिन्होंने क्लेम किया था, और मैं भी गया देखने के लिए, कोई लोग उसको भी ले गए कि हाँ वो इंसान उड़ेगा वहां पर। ये मैं अपना ऑब्जर्वेशन की बात कह रहा हूँ, कुछ लोग आए वो छिप लेटे ऐसे पेट के बल लेटे, ऐसे हाथ फैला करके। अब सब लोग देख रहे हैं कि अभी हाथ को उनका विंग पर, हाथ को विंग की तरह से वो यूज करेंगे, उड़ेंगे। अब सर उन्होंने हाथ हिलाए थे उधर, लेकिन ग्रेविटी को डिफाई करना जो है ये पॉसिबल नहीं हुआ उनके लिए, नहीं उड़ सके वो। अब वो बेचारे सब लोग जो है बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ लोगों को, सब चले गए। तो सिर्फ जानने न जाने से कुछ नहीं होता, कोई आदमी लॉ ऑफ नेचर को डिनाई नहीं कर सकता। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है, जो जिस चीज का ताल्लुक है लॉ ऑफ नेचर से उसको उन्होंने जोड़ दिया किससे, अपने जानने न जाने से। तो वो आदमी उड़ कर नहीं सके, हालांकि वो तो समझ रहे हो सकते हैं, उनकी अपना उनको यकीन होगा तभी तो उन्होंने आयाम क्या होता है, छोर बचाओ ये लोग इकट्ठा हुए वहां। तो हम समझते हम नहीं उड़ सकते, तब भी हम नहीं उड़ सकते, वो समझते उड़ सकते तब भी नहीं उड़े, तो जाने देने से भी फर्क पड़ जाएगा। यानी हम समझते अपने बारे में हम नहीं उड़ सकते, हम ग्रेविटी को डिफाई नहीं कर सकते, अब वो समझते हम डिफाई करते उड़ सकते हैं, लेकिन दोनों का रिजल्ट एक हुआ ना एक। तो मिस्टर खान जो वहां पर कहा उन्होंने, तो जिस चीज का तलवल आप नीचे से था उसको उन्होंने जोड़ दिया अपने जाने या न जाने से। अब एरोनॉटिक्स जो है, एरोनॉटिक्स तो कंप्लीट इल्म नहीं है वो, अभी कुछ और चीज बाकी है जिसको वो नहीं जानते कैसे होता है वो बम्बल भी, वो कुछ और बात है जो अभी अनडिस्कवर्ड है उनके लिए। जितना डिस्कवर किया है उसके लिहाज से वो कहते हैं कि बम्बल भी का शेप जो है उड़ने काबिल नहीं है। जैसे संदीप को हमने कहा था कि वो पहले पहले जमाने में आर्गुमेंट हुआ कहा कि लोहा जो है पानी में लोहे का बोट बन सकता है, कहा कि नहीं आयरन का बोट नहीं बन सकती। तो एक आदमी एक लोहे का टुकड़ा लाया पानी में डाला तो डूब गया, तो देखो कैसे बनेगा पानी डूब गया वो। तो दूसरा आदमी लोहे की ट्रे लाया वो पानी डाला तो तैरने लगी वो। तो आर्गुमेंट जो है अक्सर लोग नहीं समझते कि आर्गुमेंट जो है एक होता है साइंटिफिक आर्गुमेंट, एक होता है पॉलिटिकल आर्गुमेंट, अपने माइंड में होता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स वहां पर कोलैबोरेट नहीं करते। जैसे मैं मिसाल तुमको मुसलमान इसी झूठ में रहते, इसी ऑप्शन में रहते हैं सारे ही मुसलमान, तो वो पॉलिटिकल आर्गुमेंट को आर्गुमेंट समझ लेते हैं। सब मुसलमान का ही हाल है, सारे मुसलमानों का ही हाल है। जैसे एक बार कुछ हिंदुओं ने कहा कि इंडिया में मुसलमानों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो कंट्रीब्यूशन सब हिंदुओं का है, यानी हिंदुओं का लीडर राजीव नेहरू उसने फ्रीडम स्ट्रगल चलाई, इंडिया को फ्रीडम तक पहुंचाया, हिंदुओं ने किया, इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज किया, हिंदुओं ने इंडस्ट्रियलाइज किया, सारे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स है हिंदुओं के, इस तरह से एजुकेशन सिस्टम मेडिकल सिस्टम सारा हिंदुओं ने बना रखा है, यहाँ पर आदत में हिस्सा नहीं है। तो अगर देखो उसने कहा कि मुसलमान इस कंट्री में टेकर ग्रुप है, वो सिक्योर ग्रुप नहीं। हिंदुओं ने कहा, अब एक मुस्लिम स्पीकर यहाँ जलसा हुआ, मुस्लिम स्पीकर बोले उसने ये सच्ची कहानी। अब वो बोले हम हमसे कहते हो कि हमने हमसे पूछ लो कि हमने क्या दिया इंडिया को, हमने हमसे पूछ लो कि हमने इंडिया को क्या दिया, हमने इंडिया को ताजमहल की ब्यूटी दी, हमने इंडिया को ताजमहल की ब्यूटी दी, हमने इंडिया को कुतुब मीनार की बुलंदी दी। बुलंदी क्या कहते इंग्लिश में, ऊंचाई, क्या कहेंगे इसको, ऊंचाई बुलंदी क्या कहेंगे, इसका जो ताज कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है ना, ऊंचाई ऊंचाई। बस जैसे उन्होंने कहा था कि हमने इंडिया को ताजमहल की ब्यूटी दी, हमें इंडिया को कुतुब मीनार की बुलंदी दी, हमें इंडिया को रेड फोर्ट का रेड फोर्ट की वो पता नहीं क्या दिया, पोइटिक आर्ग्यूमेंट है जी, भाई कोई बिल्डिंग खड़ी करना कमरा देना है तो बादशाहों ने अपने मोन्यूमेंट खड़े किए। इन सोसाइटी का मिला, सोसाइटी को तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सिर्फ सोसाइटी को मिला। इंडस्ट्राइजेशन क्या हुआ तो सोसाइटी को मिला, एजुकेशन सिस्टम बना तो सोसाइटी को मिला, मेडिकल सिस्टम बना तो सोसाइटी को मिला। तो स्टोर्स की बिल्डिंगें खड़ी करना एक अलग चीज है, और सोसाइटी के गिवर बनना एक अलग चीज है। तो सारे मुसलमान इसमें फंसे रहते हैं, पॉलिटिकल आर्गुमेंट को साइंटिफिक आर्गुमेंट समझते हैं। उनके जितने भी बड़े इशूज है ना, कश्मीर का इशू, फलस्तीन का इशू, जितने भी इशू उनके, सब पॉलिटिकल आर्गुमेंट खड़े हुए, कोई भी साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं खड़ा हुआ है। इसे मुसलमान हटकर फेल होते हैं। अब जैसे इंडिया में देखो, जो इंडिया में जो हरिजन लोग हैं, हरिजन लोगों को इंडिया में रिजर्वेशन दिया गया है, एडमिशन में जॉब में रिजर्वेशन दिया गया है हरिजन लोगों को। अब मुसलमान क्या कहते हैं, हमको भी मिलने चाहिए, हरिजन को भी रहा था हमें मिलने चाहिए। सुना नहीं सुना इसको, ये मुसलमान ये आर्गुमेंट मुसलमान को होता है कि हरिजन को डाउन ट्रॉडन लोगों को अगर शेड्यूल्ड कास्ट को दिया गया तो हमें मिलना चाहिए। ये आर्गुमेंट पॉलिटिक आर्गुमेंट है, इसलिए रिजर्वेशन जिनको दिया गया हमारे सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या क्या कर दिया गया है, क्या उसका बैकग्राउंड क्या है, जो हमारे जो लीडर थे उनके माइंड में क्या बैकग्राउंड है इसको दिया। वो बैकग्राउंड ये है, वो बैकग्राउंड ये है कि इंडिया में इन लोगों को हर किस्म का राइट जो है उससे डिप्राइव किया गया था, कोई राइट ही उनका नहीं था। ब्राह्मण बात था इंडिया में, ब्राह्मण लोग जो है ऊंची जात नीची जात का बनाए हुए थे, सारे राइट ऊंची जात के, नीची जात के कोई राइट ही नहीं। तो क्योंकि हजारों साल से इंडिया में हरिजन को डिप्राइव किया गया था राइट से, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए उसको रिजर्वेशन दिया गया। अब मुसलमानों का हाल क्या है, एक तरफ तो लिखते हैं कि हमने इस मुल्क पर हजार साल हुकूमत की है, 800 साल तक इस मुल्क पर रूल किया है, एक तरफ ये कहते हैं हमने इंडिया पर 800 साल तक रूल किया है, एक तरफ ये कहते हैं, दूसरा हमें रिजर्वेशन भी दो। कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। अगर तुमने 800 साल तक रूल किया है तो तुम कैसे तुम मिलेगा तुमको, वो तो बेचारे उनको डिप्राइव किया गया था सारे राइट से, इसलिए उन्हें दिया गया ताकि उनको उठाया जाए। और तुम कहते हो तो हम तो इस ग्रुप में रूलिंग पार्टी रूलिंग क्लास थे 800 साल तक, तो वो किसे दिया जाएगा। तो बहरहाल मेरा तजुर्बा यह है, ये आमतौर पर लोग जानते नहीं है कि व्हाट इज साइंटिफिक आर्गुमेंट और व्हाट इज पॉलिटिक आर्गुमेंट। पॉलिटिक टर्म में वो इस बात कहेंगे और समझते हैं कि वो बात जो है साइंटिफिक टर्म में कह रहे हैं, तो ये बात तो खत्म हो गई। अब आप लोग कोई बताइए, कोई क्वेश्चन, कोई इशू, तीनों आदमी एक बात बताए। देखिए साइंटिफिक आर्गुमेंट वो है जो सब्सटेंशियल बेस بہتر کیا جائے؟ دیکھو بیسک بات یہ ہے کہ جب بھی آرگو کیا جائے کسی پر پھر اس میں دو پارٹی ہوتی ہے، ایک کہنے والا ایک سننے والا، دو پارٹی ہوتی ہے. تو ویلڈ آرگومنٹ وہ ہے جو دونوں کے بیچ میں ایکسیپٹیبل ہو. جو آرگومنٹ دونوں کے بیچ یہ ایکسیپٹیبل نہ ہو وہ انویلڈ ہے. ایک آدمی پھر وہ ایک آدمی کلیم بن جائے گا. ڈفرنٹ کلیم اینڈ آرگومنٹ. میں ایک بات کہوں اور دوسرا آدمی جو ہے وہ بات مانی نہ رہا ہو تو یہ کلیم بن جائے گا. وہ کوئی آرگومنٹ نہیں اسے بنے گا اس وجہ سے. تو کبھی ایک سامنے ایک آدمی ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا سامنے آدمی نہیں ہوتا، لیکن فرینڈشپ یعنی سائنٹیفک ورڈ ہوتی ہے. تو ہم جو بات کریں وہ سائنٹیفک ورلڈ جو ہے، سائنٹیفک ڈیٹا جو ہے، سائنٹیفک جو انفارمیشن ہے اس سے کولیبریٹ کر رہی ہو. جیسے ہمارے ہاتھ میں ایک اسپون ہے، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ہمارے ہاتھ میں اسپون ہے، ہم نے چھوڑا اس کو زمین پہ گرا، یعنی ہمارے ہاتھ سے چھوڑ کر اسپون زمین پہ گرا. اب اگر ہم یہ کہیں کہ اسپون زمین پر اس لیے گرا، زمین میں گریویٹیشنل پل ہے، اسپون ہمارے ہاتھ سے چھوڑ کر زمین پر اس لیے گرا کہ ارتھ میں گریویٹیشنل پل ہے. تو اٹ از سائنٹیفکلی ایکسیپٹ آرگومنٹ کہ سائنس جو ہے جو اس نے ڈسکوری کی ہے وہ مانتی ہے کہ ارتھ میں جتنی باڈیز ہیں، اسپیس میں جتنی باڈیز ہیں، سب میں گریویٹیشنل پل ہے، وہ کھینچتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا یہ کہنا کہ اسپیس ہمارے ہاتھ چھوڑ کر دیں تو گرا ڈیو ٹو گریویٹیشنل پل ان دی ارتھ، دیٹ از ویلڈ آرگومنٹ. کیونکہ سائنٹیفک ڈیٹا اس سے کولیبریٹ کر رہے ہیں. بھائی کولیبریٹ کر رہے ہیں، کولیبریٹ کر رہے ہیں. اچھا اگر آپ یہ کہیں کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل چھوڑا تھا اس لیے زمین گر پڑا، پھر کہوں یہ تبلیغ والے کہتے ہیں تبلیغ جماعت والے، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندی زمین گر پڑا، دیر دار سائٹ سینٹیو کارگو میں اس کو پوٹی کارگو میں کہتا ہے. سینٹیو کارگو میں ایکسپٹڈ انفارمیشن جو ہوتی ہے اس پر بیس کر کے کیا جاتا ہے. سائنٹیفک آرگومنٹ وہ ہے جو ایکسپٹڈ، یونیورسلی ایکسپٹڈ، یونیورسلی ایکسپٹڈ نالج پر بیس کر کے کیا جائے، دیٹ از سائنٹیفک آرگومنٹ. اور پریکٹیکل آرگومنٹ وہ ہے جو میرے اپنے مائنڈ میں ہو لیکن سائنٹیفک ورلڈ ہے اس کو کنفرم نہ کرتا ہوں. ان ادر ورڈس ایک اپنے مائنڈ سے بولنا اور ایک ہے سائنٹیفک نالج کو دھیان میں رکھ کر بولنا. تو اپنے مائنڈ کو لے کر بولنا یہ پولیٹیکل آرگومنٹ، اور سائنٹیفک نالج کو سمجھ کر دھیان میں رکھ کر کے اس سے مطابقت کرنے والی بات کہنا وہ ہے سائنٹیفک آرگومنٹ. جیسے اس کی خصوصیت ہے کہ میں خوب شاپنگ کروں گی، ڈیلی نیا کپڑا پہننے سے آدمی ہیلدی ہو جاتا ہے، हमेशा कोशिश करे, हर दिन नया कपड़ा पहनोगे हेल्दी बन जाओगे, आप खूब शॉपिंग करने लगे। ये उसका अपने माइंड की बात हुई, क्योंकि जो डिसिप्लिन है हेल्थ का जो यानी हेल्थ की जो साइंस है और जो रिलेटेड साइंस है, वो सही ये नहीं कहती कि नया कपड़ा पहनो हर दिन तो हेल्दी हो जाओगे। तो एक आदमी अपने माइंड से बोले कि हर दिन नया कपड़ा पहनोगे इसलिए कि मैं हेल्दी बन जा, मुझे बनना है, वो बेस्ट फार्मूला हेल्दी बनने के लिए, हर दिन नया कपड़ा, हर दिन नया कपड़ा, हर दिन नया कपड़ा। तो इसकी ग्रामेटिकली इट इज ट्रू, इस सेंटेंस की ग्रामर तो ठीक है, इस सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। अगर सूफिया ये कहे कि मैं मुझे हेल्दी बनना है, हेल्दी बनने के लिए मुझे हर दिन नया कपड़ा पहनना है, क्योंकि जो नया कपड़ा डेली बदले नया गया तो वो हेल्दी हो जाएगा, इस पूरे सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। लेकिन जो साइंस ऑफ हेल्थ है या जो रिलेटेड साइंसेज हैं, वो नहीं ऐसा कहती, उसको कंफर्म नहीं करती, इसको वो एंडोर्स नहीं करती इसको, इस स्टेटमेंट को। भगवान की पूरी पॉलिटिक्स ये तब्दीली जमात है ना, आप रामजन बस्ती में सेंटर है, तो उसके जो वो थे प्रेसिडेंट थे, अब वो डेथ हो गई उनकी, तो स्पीच दे रहे थे, उसमें स्पीच दे रहे थे, इमोशन होकर बोलते थे वो। अब बोलते बोलते उन्होंने कहा कि क्या बताएं, अपना ईमान पक्का नहीं है, अगर ईमान पक्का होता तो हम रूस अमेरिका से कहते कि अपना एटम बम हमारे छत में गिराओ। मतलब हमारी जो सेंटर है उसके रूफ पर एटम बम गिराएगा तो रूफ टूटेगा नहीं, अगर हमारा ईमान पक्का हो तो। हैं? समझे क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्या बताएं, हमारा ईमान पक्का नहीं, हमारे ईमान में उतना जान नहीं, ये तो हम रूस अमेरिका से कहते कि अपना एटम बम का एक्सपेरिमेंट क्या करो, हमारी रूफ टूटेगी नहीं। तो ये आर्गुमेंट है एक इमोशनल स्पीच है, वहां मैं कहूंगा ग्रामर इसकी सही है, कोई ग्रामर ग्रामेटिकल मिस्टेक इसमें नहीं है। लेकिन अब तुम इसका वो करो, उन्होंने जिस चीज की ईमान से जोड़ा उसका तो ईमान से नहीं है, एक घर के रूफ एक बम से नहीं टूटेगी, इसका तो ईमान से नहीं है। इसलिए कि सबसे बड़ा ईमान तो प्रॉफिट का था, बाबा की बात तो ईमान किसी का नहीं हो सकता, और बैठे उहुद में जो एनिमी थे उन्होंने पत्थर मारा स्टोन, और रसूलुल्लाह के राह लगा और दांत टूट गया। तो अगर पत्थर रसूलुल्लाह दांत टूट सकता है जो सबसे बड़े ईमान वाले थे, तो तुम्हारी रूह जो है उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, बम से नहीं टूटेगी। ये है लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर को डिफाइड कर सकता कोई आदमी, चाहे प्रॉपर्टी को ना हो, रूफ टूटा इनरेटिव उसका तल्लु ईमान से फेथ से नहीं है, उसका फेथ से नहीं तल्लुक, उसका तल्लुक है लॉ ऑफ नेचर से। तो लोग करते हैं इन कंफ्यूजन रहते हैं कि जिस चीज का तल्लुक है लॉ ऑफ नेचर से उसको जोड़ देंगे फेथ से और फिर स्पीशीज देंगे। रिपीट करो क्या काम है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सारे मुसलमान इसमें पड़ गए।
क्या बताए, हमारा ईमान इतना इतना अच्छा नहीं है, अगर इतना अच्छा होता तो हम रूस और अमेरिका से बोलते कि आप अपने एटम बॉम्ब हमारे छत से गिराइए और
एक्सपेरिमेंट करते चलिए,
एक्सपेरिमेंट करिए और कुछ होगा नहीं।
You cannot defy law of nature. It's impossible.
You cannot defy law of nature. The way you give it, because you give an example so that in battle of Uhud, nobody's faith or iman would have been bigger than that of the prophet. And in the battle of Uhud, someone was hit by a stone, and it came and his teeth got broken and started beating. If a stone could break Prophet Muhammad's teeth, then what is your demand? Is it greater than Prophet Muhammad? That's number one. But whatever statement he made was not in collaboration with the law of nature.
But the law of nature prevails correct Amisha. Koi bhi emotional speech law of nature ko badal sakti hai. Isliye hame law of nature ko dekhna chahiye. अब मैं और मिसाल देता हूँ कि मुसलमान किस तरह से झूठी तरह से जी रहे हैं। इन्हें 1947 में पाकिस्तान बना, 1947 में पाकिस्तान बना। उससे पहले 50 वर्ष तक मूवमेंट चलती रही मुसलमानों में, सारे मुसलमान उसको फेवर करने लगे। पचास वर्ष तक, 47 से पहले 50 वर्ष तक वो क्या था, मुझे था कि हमें अपना अपने रिलीजन पर हमें रहने के लिए, अपने रिलीजन पर अपनी सोसाइटी बनाने के लिए हमें अलग फोकस चाहिए। जब तक अलग फॉकट रहेगा हमें सिक्योर्ड लाइफ नहीं मिल सकती है, हम डेवलप भी कर सकते हैं। यानी अलग फॉकट में मुसलमान होंगे, सब भाई भाई होंगे और आपस में क्लेश भी होगा और सब यूनिटी के साथ रहेंगे तो खूब प्रोग्रेस होगी। ये आर्गुमेंट था कि अलग फॉकट हमें दो ताकि हम खुद मिलजुल कर रहे, भाई भाई सब, और फिर खूब प्रोग्रेस हो हमारी। इसको लेकर के लिए दो मजाक पाकिस्तान पाकिस्तान बना। ये दैट वाज आल्सो अ पॉलिटिकल आर्गुमेंट। इन्हें जो जिन जो जो जिस हिस्ट्री जो ह्यूमन हिस्ट्री जिन जिन लॉज को फॉलो कर रही है वो ये नहीं है जो मुसलमान समझा कि हम सब एक रहेंगे, सब भाई भाई रहेंगे। अच्छा, अनोखी बात है कि गांधी और जिना दो बिल्कुल एक दूसरे के वो थे, फोर अपार्ट थे, लेकिन सब दोनों ही की लॉजिक एक थी। जिना ये कहते थे अलग पॉकेट हमें पाकिस्तान की सूरत में मिल जाएगा तो हम सब मिलजुल कर रहेंगे, सब मुसलमान ही मुसलमान होंगे, सब भाई भाई होंगे। गांधी कहते थे कि हमें आजादी मिल जाएगी और एक इंडिया का अपना एक देश बन जाएगा तो सारे इंडियन मिलजुल कर रहेंगे, सारे इंडियन जो यूनिटी रहेगी, प्रोग्रेस करेंगे। तो वहां वो समझते थे कि मुसलमान सब यूनाइट होकर रहेंगे अलग पॉकेट में, यहाँ समझते थे कि सारे इंडियंस यूनाइट रहेंगे अलग पॉकेट, आजाद पॉकेट। एक सेम लॉजिक दोनों को माननी थी और बिल्कुल ये लॉजिक बिल्कुल फॉल्स थी। एक यूनिटी को ये बात वैसे समझते हो जो लॉ ऑफ नेचर है उसके मुताबिक जो है यूनिटी को What disturbs unity is interest and not anything else. Unity को जो चीज disturb करती है, disrupt करती है, जो break करती है, वो interest है। یہ نہیں کہ سارے مسلمان ہیں تو ہندی رہے گی، سارے ہندو ہیں تو یونٹی رہے گی، سارے ہندی ہیں تو یونٹی رہے گی، تو صرف یونٹی کس یونٹی آتی ہے ہمیشہ انٹرسٹ کی وجہ سے، اور یونٹی آتی ہے ہمیشہ یعنی ایجوکیشن ہو لوگوں میں، لوگ سمجھدار ہوں تب یونٹی رہے گی. یونٹی ایک فینومنا ہے اس بات کا کہ لوگ سمجھدار ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں، لوگ جو ہیں باتوں کو گہرائی میں جانتے ہوں، اس سے اس کا تعلق ہے. یعنی کہ سب ایک لیجنڈ کے ہیں، ایک لیجنڈ ایک کچہ کے یونٹی ہو جائے گی، ایک لیجنڈ سے نہیں یونٹی آتی. سمجھدار ہونے سے انٹرسٹ کیوں؟ اس لیے کہ ڈفرینس از پارٹ آف دس ہے، ڈفرینس ہمیشہ رہے گا، چاہے برٹش رول کریں، انڈیا ہندو رول کریں، مسلمان رول کریں، ڈفرینسز رہیں گے. یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف ڈفرینس مینجمنٹ. یعنی ایک ریجن ہونا، ایک کلچر ہونا، ایک پاکٹ ہونا، اس کا کوئی تعلق نہیں یونٹی سے. یونٹی کو ڈسٹرب کرتا ہے ڈفرینس، اور ڈفرینس جو ہے وہ پارٹ آف نیچر ہے. ڈفرینس کا یو کین ناٹ ایلیمینیٹ دا ڈفرینس. ریگارڈنگ دس ایشو وی ہیو نو آپشن ادر دین ٹو لرن دا آرٹ آف ڈفرینس مینجمنٹ. اب دیکھو کہ انڈیا میں پاکستان دونوں جگہ کلیشی کلیش ہے، ٹکرا رہے ہیں، دونوں جگہ ٹکرا رہے ہیں، دونوں جگہ کلیش ہے، دونوں جگہ ڈس یونٹی ہے. ڈس یونٹی اتنی بڑی ہوئی ہے یہاں پر کوئی گورنمنٹ ہی بن پاتی ہے، ایک پارٹی کی گورنمنٹ بننے پر تیس پارٹیوں کلیشن بنتا ہے. اور کلیشن گورنمنٹ کی سب سے بڑی برائی ہے کہ کوئی پالیسی نہیں بن پاتی. ایک جو سیگمنٹ ہے ایک بات کہے گا تو دوسری بات کہے گا، اب کوئی پالیسی نہیں بن پاتی. تو انڈیا میں یہ سب ہو رہا ہے کہ انڈیا کی کوئی پالیسی نہیں، کیونکہ مختلف سیگمنٹ ہیں یہاں کی کلیشن میں. بس ایک سیگمنٹ کہتا ہے لبرل اکانمی، کہتا ہے کہ سوشلسٹ اکانمی، ایک سیگمنٹ کہتا ہے کہ ولیج بیسڈ اکانمی، کہتا ہے سٹی بیسڈ اکانمی. تو اتنا ڈفرینس ہے، تو کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا یہاں پر. تو جب سارے انڈین ہیں تو پھر ان کو ٹکراؤ کیوں؟ تو گاندھی کا فارمولا بھی غلط، جناتی کا فارمولا بھی غلط. تو ہمارے لوگ آ گئے کہ وہ دے ڈونٹ نو واٹ از ویلڈ آرگومنٹ، دے ڈونٹ نو دا ڈفرینس بٹوین پوئٹک آرگومنٹ اینڈ سائنٹیفک آرگومنٹ. میں کلیئر ہوئی؟ چلو.